جو مکرم ہے وہ کسی کے آگے ذلیل ہو جائے، اس اسے کسی کے آگے ذلیل و خوار ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو انسانی معاشرے کے اندر اختلافات کا امکان ہے، اب ان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ اب قانون بنانے کا حق کس کو حاصل ہے کہ اللہ کے علاوہ کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان میں قانون کو بھیجے، اس لیے کہ انسان کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان کسی قانون کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے آگے سر جھکاتا ہے اور جھکانے کا اسے حق ہے تو وہی جو اس کا خالق ہے اور جو ذاتی طور پر اس کا مالک ہے، کسی نے اس کو مالک بنایا نہیں ہے، کسی نے اس کو مالک بنایا نہیں ہے اور نہ وہ زبردستی مالک بنا ہے، بلکہ وہ ذاتی طور پر ہمارا مالک ہے، کیونکہ خلقت کی وجہ سے اسی نے ہم کو خلق کیا ہے بغیر واسطے کے، لہذا کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے، اس کے فعل میں، اس کے صفات میں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا ہم مستقل اسی کے بندے ہیں، اسی کی ملکیت ہے، بلا شرکت غیر ہم اس کی مخلوق ہیں۔ جب بلا شرکت غیر ہم اس کی ملکیت میں ہیں اور اس کی مخلوق ہیں تو ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کا حق نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر ہمارا مالک ہے، مالک و مختار ہے۔
نعرہ
تکبیر،
وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا حاکم ہے۔ اب لہذا انسانی معاشرے میں جب آپس میں الجھن پیدا ہوگی یا آپس میں اختلاف پیدا ہوگا تو اس کے لیے کون، کس کا حکم آخری حکم کہلائے گا، اختلافات کو رفع کون کرے گا، کیونکہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے اور دونوں انسان آپس میں لڑ پڑ گئے ہیں، دونوں انسان ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں، تو ایک دوسرے کی بات کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کوئی ان سے بڑا ہونا چاہیے، تو انسانوں سے بڑا کون ہے جو انسانوں پر فیصلہ کرے، جانوروں کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جانوروں کے اوپر انسان جو ہے وہ خلیفے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن خود انسان آپس میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے تو ان کے درمیان میں حاکم کون ہوگا، کس کا قانون چلے گا، کس کی حکومت چلے گی؟ تو اب انسانی معاشرے کی مشکلات اور مسائل اور ان کے راہ حل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے صحیفے نازل کیے اور اپنے نبیوں کو، اپنے سفیروں کو، اپنے مرسلین کو جج بنا کر بھیجا کہ قانون دے کے بھیجا کہ مجری قانون آپ ہیں، یہ قانون ہے اور آپ مجری قانون ہیں، قانون بتانا آپ کا کام ہے اور قانون پر عمل کروانا یہ آپ کا کام ہے، یہ قانون ہے اور یہ مجری قانون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجری قانون بنا کے بھیجا، قانون دے کے بھیجا کہ انسانوں کے درمیان میں اختلاف ہو تو آپ کی شریعت حکم کرے گی اور آپ مجری قانون ہوں گے۔ اسی طرح سے مرسل اعظم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجری قانون بنا کے بھیجا، لیکن حکم کس کا ہے، یہ اجرا کرنے والے ہیں قانون کو، یہ تو اجرا کرنے والے ہیں قانون، لیکن اصل قانون بنانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ جو مجری قانون ہے وہ قانون کا بانی نہیں ہے، انہوں نے قانون بنایا نہیں ہے، ان کا اپنا ذاتی حکم نہیں ہے، وہ خود کسی کے حکم کے تابع ہیں، جو قانون وہ لے کر آئے ہیں وہ قانون پر عمل کرنا خود ان کی بھی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجری قانون قانون پر عمل نہیں کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ مجری قانون سب سے زیادہ قانون پر عمل کرنے کا تابع ہوتا ہے، पाबंद होता है कानून पर अमल करने का, तभी तो उसको मुजरिम कानून बनने का भी हक हासिल है, जिसको खुद कानून पर ईमान नहीं है, जो खुद कानून को नहीं मानता दूसरे को कानून मनवा कैसे सकता है। एक मरतबा और सब मिलते कानून पर कोई बालादस्त नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून के ऊपर किसी का कानून नहीं चलता, कानून एक कानून है उससे उसके ऊपर किसी का कानून नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये कानून अल्लाह का है, अल्लाह के कानून के ऊपर किसी का कानून नहीं चल सकता। हुक्म खुदा के ऊपर किसी का हुक्म चल सकता है? किसी का हुक्म है जो अल्लाह के हुक्म के ऊपर चले? कौन है जो सिफारिश करा सकता है? कौन है जो शफात कर सकता है? किसी को हक शफात हासिल नहीं है इल्ला बिइज़्ने, इल्ला बिइज़्ने उसके हुक्म से, उसके इज्न से। अगर वो इज्न न दे तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता है कि उससे आकर सिफारिश करे, उसकी बारगाह में किसी की सिफारिश नहीं चलती। उसके अगर वो हुक्म दे दे तो उस हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चलता, कोई सिफारिश नहीं चलती। अब अगर कोई सिफारिश चलेगी भी तो इल्ला बिइज़्नी ही, कैद के साथ चलेगी कि अगर वो इज्न दे तो फिर उसके बाद आखिरी बात क्या होगी? आखिरी हुक्म फिर उसी का हुआ कि बगैर उसके इज्न से कुछ नहीं हो सकता। तो मालूम ये हुआ कि असल हाकिम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है कि इन्ना अंज़लना इलैकल किताब, आज की शब नुज़ूल कुरान की शब है, आज की शब शबे कद्र है, आज की शब शबे मारिफत है, आज की शब शबे इबादत है, आज की शब शबे इस्तग़फ़ार है। अगर आज की शब इंसान अल्लाह का ना हुआ तो फिर कौन सी शब को हो सकता है? अगर आज कुर्ब ना हासिल कर सका तो फिर कब कुर्ब हासिल करेगा? और अगर आज इंसान के गुनाह ना बख्शे जाए तो फिर कब बख्शे जाएंगे? आज किया जाने वाला हर अमल 100 साल की इबादत पर भारी है, 100 साल, 1000 साल, 100 साल नहीं, 1000 साल, इतनी हुई 1000 साल की इबादत का शरफ, आज की एक रात की इबादत का जो शरफ है वो 1000 साल की इबादत का सवाब रखे। इसी तरह आज किसी को इफ्तार कराए, आज किसी को जो है सहर करवाए तो ऐसा है जैसे उसने 1000 महीनों का सवाब कमाया, क्योंकि जो भी किया जाएगा वो 1000 साल पर फजीलत रखेगा। आज की शब 1000 साल, 1000 महीनों पर फजीलत रखती है, 1000 महीनों पर फजीलत रखने वाली शब यही शब है कि जिस शब कुल कुरान नाज़िल हुआ, इतनी बड़ी नेमत नाज़िल हुई कि ये नेमत से अगर इंसान महरूम रह जाए तो समझिए हर चीज से महरूम रह गया, और अगर इस चीज से महरूम न रहा तो समझिए पूरी चीज से महरूम न रहा। ये सबसे बड़ा तोहफा है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से आया है, आप इंसानों पर के दरमियान होने वाले इख्तलाफात का राह हल ढूंढे, ताकि इंसानों के दरमियान फैसला करे, तहकुमा बैनन्नास बिमा अराकल्लाह, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करे। रसूल का काम फैसला करना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हुक्म रसूल का नहीं होता, हुक्म खुदा का होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद कुरान मजीद रसूल की बनाई हुई किताब नहीं है, कुरान मजीद रसूल अल्लाह की लिखी हुई किताब नहीं है। कुरान मजीद इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो हुक्म حکم خدا کے مطابق نہ ہو اور جس کا جن کلمات کا انتخاب اللہ کی ذات نے نہ کیا ہو. حدیث اور قرآن میں فرق یہی ہے کہ حدیث مفہوم وحی کو بیان کرتا ہے, الفاظ نبی کے خود اپنے ہوتے ہیں, مفہوم مطابق وحی ہوتا ہے, لیکن الفاظ کا انتخاب نبی کرتے ہیں تو حدیث کہلاتی ہے, لیکن الفاظ کا انتخاب بھی ذات ربوبیت کی جانب سے ہو تو اسی کو قرآن کہا جاتا ہے. کہ قرآن کے الفاظ کا انتخاب نبی کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. الفاظ کو زندگی اللہ نے بخشی ہے. یہ جو الفاظ ہے یہ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے, لہذا یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ کی ذات جلوہ کر ہوتی ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا ہے تو آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہوگا. قرآن میں اللہ کا جلوہ نظر آ تجلیات الہیہ, اور اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اسے سمجھنا ہے تو قرآن مجید پڑھنا ہوگا جس میں اس کا چہرہ نظر آتا ہے. اللہ کا چہرہ قرآن مجید میں نظر آتا ہے, اس کی ذات کی تجلی قرآن مجید میں ہے. جس کے الفاظ, جس کی عبارات سے صرف ہم آشنا ہو سکتے ہیں, عبارات کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو جلوہ نظر آتا ہے وہ جلوہ صرف الفاظ کی صورت میں, لیکن حقیقی جلوہ کس کو نظر آتا ہے؟ انبیاء کو نظر آتا ہے, ائمہ کو نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حقیقی ان کے حصے میں آتی ہے. تو عزیزان گرامی, حکومت اسلامیہ میں حاکم اسلامی جو ہوتا ہے وہ قانون نہیں بنا سکتا اور نہ ہی وہ حکم چلا سکتا ہے. حکومت اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان حاکم بن جائے اور وہ حکومت کرے, اسے حکومت اسلامیہ نہیں کہا جاتا. مسلمان کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں کہا جاتا. مسلمانوں کی حکومت الگ ہے, اسلام کی حکومت الگ ہے. مسلمانوں کی حکومت میں حاکم مسلمان ہوتا ہے, لیکن اسلامی حکومت میں حاکم اللہ کی ذات ہوتی ہے. حاکم اللہ کی ذات ہوتی ہے, قانون اللہ کا ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم چلے تو حکومت اللہ ہے, اگر اللہ کا قانون نہ چلے, حکم خدا نافذ نہ ہو تو سمجھو وہ حکومت اسلامی نہیں ہے, وہ قانون اسلامی نہیں ہے. حکومت اسلامی کا نام لیا جاتا ہے لیکن اپنی منمانی کی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہا جاتا ہے, میں یہ کہتا ہوں نہیں بلکہ اللہ یہی کہتا ہے اور اللہ کی بات کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. حکم خدا یہ ہے, میرا حکم, میں خود تابع حکم الہی ہوں. جو بھی حاکم ہوتا ہے, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ مرجع تقلید ہو, سبھی کے سب پابند حکم الہی ہوتے ہیں, حکم خدا کے تابع ہوتے ہیں, قانون کی اتباع کرتے ہیں. کیا نعوذ باللہ امام قرآن کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں, قرآن کے خلاف کچھ کہتے ہیں؟ انہوں نے تو یہی بتایا ہے کہ اگر ہماری حدیث کو سمجھنا ہے کہ یہ ہم نے کہا ہے یا ہمارے غیر نے کہا ہے, تو تم کیسے سمجھو گے کہ یہ حدیث ہماری ہے, ہم نے کہی ہے؟ تو تم قرآن سے مراجعہ کرو. اگر ہماری گفتگو قرآن مجید سے ہم آہنگ ہے تو سمجھو ہم نے کہا ہے, اگر ہماری بات قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کو دیوار پر مار دو کہ وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی قول قرآن مجید کے مخالف نہیں ہو سکتا, حکم خدا کے مخالف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہم خود حکم خدا کی کلام کی روشنی میں کلام کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس پر قرآن مجید جس کی تائید نہ کرتا ہو. ہم کوئی کام کریں اور اس کام کی مخالفت قرآن مجید میں نہیں ملے گی. चाहे उनकी जंग हो या उनकी सुलह हो, उनकी गुफ्तगू हो या उनका कौर हो कि उनका फेल हो, उनका किरदार हो, कोई हरकत उनके वजूद से ऐसी साबित नहीं होती कि जो कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक न हो, जिसकी ताईद कुरान न करता हो, और ऐसा नहीं कह सकते जिसकी ताईद कुरान मजीद न करे, ऐसा कोई फेल सरजद नहीं हो सकता है कि जिसकी ताईद कुरान मजीद न करे। इसका मतलब यह है कि वो कानून के तामे है, वो अल्लाह पर अपना हुक्म नहीं चलाते बल्कि अपनी जात पर उसका हुक्म चलाते, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि हुक्म आजाद खुदा है, बस हुकूमत अल्लाह की हुकूमत है। हुकूमत करने का हक बंदों पर है तो उसके मालिक का हक है, उसके खालिक का हक है। हम जिसकी मिल्कियत है, हमारा जो मालिक है, वही हमें हुक्म दे सकता है। हम उसी की बात पर उठेंगे, उसी की बात पर बैठेंगे, उसी के हुक्म पे चलेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो हम पर हुक्म चलाए, जो कहे कि उठो तो हम उठें, वो कहे बैठो तो हम बैठें। क्यों हम किसी की बात सुने? हमको किसी की बात सुनने का हक हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर माँ बाप ने हमें पैदा किया, दुनिया में आने का वसीला बने। अब जो माँ बाप कहेंगे हम उसको मानेंगे, माँ बाप जो कहेंगे हम उसको मानेंगे। माँ बाप के अलावा कोई हमसे कहेगा हम उसकी क्यों इत्तेबा करते रहेंगे? हम माँ बाप की बात मानते हो, किसी की बात नहीं मानते। जो माँ बाप कहे उसकी बात मानते। अभी और बात है कि माँ बाप की बात और खुदा की बात से टकरा जाए। वह इन दुश्मन का भी माँ ले सल्ला का भी इल्म बला होते हुमा, अगर ये लोग शिर्क की दावत दे तो तुम उनकी बात न सुनो। क्यों? असली मालिक हमारा अल्लाह की जात है, ये तो वसीला बने हैं, और इनकी बात सुनने के लिए उसने कहा है, जो हकीकी मालिक है उसने कहा है कि जिस वास्ते के वास्ते से तुम दुनिया में आए हो, दुनिया में जो तुम्हारे माँ बाप है उनकी तुम इत्तेबा करो, ये हुक्म भी अल्लाह ने दिया है। फिर उसी ने ये हुक्म दिया है कि अगर मुस्तहब नमाजों से रोके तो रुक जाओ, मुस्तहब रोजे से रोके माँ बाप तो रुक जाओ, मुस्तहब हज से रोके तो रुक जाओ, मुस्तहब उमरे से रोके तो रुक जाओ, मुस्तहब ज़कात देने से मना करे तो रुक जाओ, लेकिन अगर वाजिब से हुक्म टकरा जाए तो न मानो। उसने हुदूद कायम किए, उसी ने माँ को माँ बनाया है, बाप को बाप बनाया है। माँ बाप का हुक्म अगर हमारे लिए काबिल इताअत है तो वो अल्लाह सुभानहु ताला ने कहा है कि तुम माँ बाप की इताअत करो, तो हम माँ बाप की इताअत कर रहे हैं, क्योंकि असली मालिक तो हमारा अल्लाह है, ये तो वसीला बने हैं। तो कुछ लोग दुनिया में आने का वसीला बने, कुछ लोग नजात का वसीला बने। तो जो नजात का वसीला बने, जिनके जरिए से हम दीन में दाखिल हुए, जिनका कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए, उनकी इताअत भी हम पे फर्ज है। अब जो उनकी इताअत हम पे फर्ज है तो वो भी अल्लाह के हुक्म की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि तुम रसूल की इत्तबा करो तो हम रसूल की इत्तबा करते हैं, अल्लाह ने कहा कि तुम इमाम की इत्तबा करो तो हम इमाम की इत्तबा करते हैं। हम इमाम की जो इताअत करते हैं उसके लिए हमारे पास नस होना जरूरी है। अगर हमारे पास नस ना हो, हमारे पास हुक्म खुदा ना हो, तो हम किसी की भी इत्तबा नहीं कर सकते। चूंकि हमारे पास हुक्म इलाही मौजूद है, कुरान मजीद का हुक्म मौजूद है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, कौलुल अम्र मिनकुम, और साहिबान अम्र की इताअत करो, साहिबान अम्र की इताअत करो, ये अल्लाह सुभानहु तआला ने कहा है। फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, अगर तुम किसी बात पर तनाज़ुआ करो, अगर तुम किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो उसे तुम अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ। यानी ये इमाम है, ये हाकिम है, तो किस लिए? कि तुम्हारे दरमियान में अगर किसी चीज पर इख्तलाफ, आप बताइए कौन है हम शियों में जो अमीरुल मोमिनीन को इमाम मानने के लिए तैयार है? कौन इमाम मान रहा है? कितने लोग इमाम मानते हैं? अगर अगर शियों से कहा जाए हाथ उठाइए, कितने लोग हजरत अली को इमाम मानते हैं? तो कितने लोग हाथ उठाएंगे, कहां उठाएंगे? इसलिए कि अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो कभी कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फैसला करेंगे और नहजुल बलागा के मुताबिक फैसला होगा, हुक्म इमाम के मुताबिक फैसला होगा। तो जितने शियों के दरमियान में झगड़े हो रहे हैं, हदीस उन्हें आकर जो है उनके दरमियान फैसला कर रही है, अमीरुल मोमिनीन फैसला कर रहे हैं। मकान का झगड़ा होता है ना, दुकान का झगड़ा होता है, आपस में मियां बीवी के झगड़े होते हैं, दोस्तों के आपस में इख्तलाफ होते हैं, ग्रुप ग्रुप टकराती है, अंजुमन अंजुमन से लड़ती है, जागीरीन जागीरीन से लड़ते हैं। तो फिर जागीरीन जब झगड़ा करते हैं आपस में, जब अंजुमने आपस में झगड़ा करती हैं, जब मोमिनीन आपस में इख्तलाफ करते हैं, तो कुरान कह रहा है कि तुम साहिबान अमर की इताअत करो, जिसको तुम हाकिम मानते हो उसकी इत्तबा करो। तो कौन है जो हाकिम की बात मान रहा है? कितने फैसले अली करते हैं, कितनी फैसले अदालतें करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी हुकूमत की हाकिमियत को मानते हैं। इख्तलाफात जब होते हैं तो किसकी तरफ ले जाते हैं? वही तनाजा तुम मिन शैइन, अगर कोई चीज के बारे में तुम्हें इख्तलाफ हो जाए, फरुद्दुहु इलल्लाह व रसूल, तो अल्लाह रसूल की तरफ ले। कहने के लिए तो सब उसूली है, कहने के लिए तो सब अखबारी है, अखबारियों के झगड़े भी अदालत में जाते हैं, उसूलियों के झगड़े भी अदालत में जाते हैं। तो फिर न ये मुश्तहिद को मानते हैं, न वो किसी अखबारी को मानते हैं, सब के सब हिंदू और काफिरों की हुकूमत को मानते हैं, काफिर जज का फैसला कबूल करते हैं। तो कुरान कह रहा है कि अगर आपस में किसी बात पे तनाजा हो जाए, तनाजा तुम शैइन फरुद्दुहु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटाओ, तो हाकिमियत असल यानी हाकिमियत हमें जिंदगी में कबूल करना है। हाकिमियत को ऐसा नहीं है कि अड़ो मुट्टा की है, हम कहते नहीं कि चुप चुप की हाकिमियत नहीं है, मतलब हम मानते हैं चुप चुप के मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन को इमाम मानते हैं, चुप चुप का इमाम मानते हैं, हकीकत में नहीं मानते, यानी हकीकत में उनके फैसले को हम अहमियत नहीं देते, नऊज़ुबिल्लाह, उनका हुक्म नहीं सुनते, जब इख्तलाफ होता है तो उनकी बात नहीं सुनते, कोई बात उनकी तरफ रुजू नहीं करते हैं, उनको हम मर्जा नहीं मानते, उनका फैसला नहीं सुनते हैं, यानी उनको हाकिम नहीं मानते हैं, उनका हुक्म तस्लीम नहीं करते हैं। अल्लाह का हुक्म मानते हैं नहीं मानते, झगड़ा होता है तो अल्लाह का हुक्म मानते हैं नहीं मानते, तो मतलब अल्लाह को हाकिम नहीं मानते, रसूल की तरफ रुजू करते हैं नहीं करते हैं, रसूल को हाकिम नहीं मानते, इमाम का हुक्म सुनते हैं या इमाम का हुक्म भी नहीं सुनते, खुद ही फैसले कर लेते हैं अपने। لتحكم بين الناس في مختلفا لتحكم بين الناس, लोगों के दरमियान में जब इख्तलाफ हो जाए तब कानून की जरूरत पड़ती है ना, कौन सा कानून मानते हैं? हुकूमत का कानून मानते हैं, अल्लाह का कानून मानते हैं? इन्ना अंजलना इलैकल किताब, हमने आप पर कुरान नाज़िल की, لتحكم بين الناس, ताकि लोगों के दरमियान में हुक्म करें, बिमा अराक अल्लाह, अल्लाह की हुकुम के मुताबिक फैसला करें, इसके लिए कुरान आया है ना। तो आप कुरान को मानते हैं? कुरान को मानते हैं? कुरान का हुकुम मानते हैं? दोनों अगर मुसलमान हैं और दोनों ये कहते हैं कि हम कुरान के फैसले को मानते हैं, तो बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन आप बताइए, मस्जिदों के इमाम भी झगड़ा करते हैं तो कुरान फैसला नहीं करता है? दोस्तों के दरमियान में जब झगड़ा होता है तो ये नहीं कहते कि कुरान की तरफ रुजू करेंगे, हुक्म खुदा को मानेंगे, हुक्म कुरान को मानेंगे, कुरान क्या कहता है? लतहकुम बैनन्नास कहा है, हुक्म कुरान को कहा माना जा रहा है? सिर्फ नमाज पढ़ना रोजा रखने को का मतलब ये नहीं, ये तो इबादत है खुदा, हाकिम क्या मान रहे हैं? हुकूमत इस्लामी का है, देखिए दो अलग अलग चीज है, अल्लाह को माबूद मानना एक अलग मसला है, अल्लाह की इबादत एक अलग मसला है, हुकूमत इस्लामिया एक अलग मसला है, अल्लाह को हाकिम मानना अलग मसला है, इताअत खुदा एक अलग मसला है, हुक्म इलाही देता है, हुक्म फैसला, फैसला जिंदगी में फैसला, मुश्किल यही है। वरना अगर अमीरुल मोमिनीन को जो है चुप चुप का इमाम मानना होता नूज बिल्ला, तो सारे के सारे लोग मान लेते, रसूलुल्लाह के बाद इसलिए कि जिसको भी बनाया चुप चुप का बनाया कि आपको जो करना है कर लीजिए। खलीफा भी ये कहता है कि अगर मैं गलती से इधर मुड़ जाऊं तो आप लोग मुझे इधर मोड़ दीजिए। मतलब ये हुआ कि आप लोग मेरे ताबे नहीं है, मैं आपका ताबे हूं। मेरा हुक्म आप पे नहीं चलता बल्कि आपका हुक्म मुझ पर चलता है। तो जब आपका हुक्म मुझ पे चलता है तो फिर मेरी हुकूमत आप पर कहां से हुई? कहना ये चाहिए कि आप और हम किसी बात पर में जो है इख्तलाफ करें तो अल्लाह सुभान व तआला की तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह हम दोनों के दरमियान में फैसला करेगा। हुकूमत अल्लाह की है, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह के बंदा हूँ, मैं भी हुक्म खुदा का ताबे हूँ, आप भी हुक्म खुदा के ताबे। हुकूमत अल्लाह की है। तो अब जब अल्लाह की हुकूमत होगी तो फिर उसको हुकूमत उसको हक हासिल होगा। जो अल्लाह के कानून को जानता है वही अल्लाह के कानून का इजरा भी करेगा। तो जब तक रसूल जिंदा है हुक्म कुरान के मुताबिक फैसला करने का हक रसूल को इसलिए हासिल है कि अल्लाह के कानून को रसूल से ज्यादा बेहतर कौन समझता है? रसूल के बाद उसको हक हासिल है कि जो रसूल की सुन्नत से सबसे ज्यादा करीब है, जो ये जानता है कि हुक्म खुदा क्या है, हुक्म खुदा को बेहतर कौन समझता है। उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज्यादा कुरान को समझने वाला जो है वही कुरान का इजरा करवा सकता है, वही कुरान के मुताबिक फैसला दे सकता है। मसला फैसला देने का है, हुकूमत का मसला है, किसास का मसला, दियात का मसला, बय और शिरा के मसाइल जिसके ऊपर इख्तलाफात होते हैं ना, इजारे का मसला, मीरास का मसला है ना, ये जब ये मसाइल हैं इन मसाइल में इख्तलाफ होगा मीरास के मसाइल, तो रुजू किसकी तरफ हम करेंगे, फैसला कौन करेगा मीरास के मसले में? फैसला किसके? दो भाई आपस में झगड़ा करेंगे मीरास के मसले में तो रुजू किधर करते हैं आप? कहा जाता है केस आपका? जमीन की मिल्कियत के बारे में दो भाई आपस में झगड़ा करते हैं या दो मोमिनीन आपस में झगड़ा करते हैं तो फिर कौन सी हुकूमत फैसला करते हैं? आखिर कौन होता है आपका? ये वो अहम तरीन मसला है। देखिए अज़ीज़ाने गिरामी, अगर ये मसला हल नहीं होगा तो हम अल्लाह को माबूद तो मानेंगे लेकिन अल्लाह को हाकिमियत तसव्वुर, अल्लाह की हाकिमियत को नहीं मानेंगे, हुकूमत खुदा को नहीं तस्लीम करेंगे, अल्लाह को अपने ऊपर हाकिम नहीं समझेंगे, तो इस तरह से हमारा माशरा मुस्लिम माशरा नहीं हो सकता। ये अहम तरीन मसला है जिसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है या असलन तवज्जो ही नहीं दी गई है, क्योंकि मुहालिता क्या हुआ है मालूम? हमारे जहनों में या हम सबके जहनों में मुहालिता क्या बैठा हुआ है कि जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो बस काफी है, दो रकअत जो नमाज पढ़ लेते हैं ना वो हमारे मुसलमान होने के लिए काफी है, माशरे मुस्लिमीन के लिए काफी है कि दो रकअत फजर की नमाज पढ़ लें, चार रकअत जोहर की नमाज पढ़ लें, असर की नमाज पढ़ लें, बस काफी है। ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं बस। अब ये जरूरी नहीं है कि मीरास के मसले में इख्तलाफ हो जाए तो अदालत में जाए या पुलिस को बुलाए, ये कोई मसला नहीं है। ये कोई मसला नहीं है कि पुलिस उसकी मुदाखलत करें या अदालत मुदाखलत करें, हम इसके बारे में तवज्जो नहीं देते। जबकि कोई भी थोड़ी सी नाइत्तेफाकी भी हो जाए तो हमें रुजू किधर करना है? थोड़ी सी नाइत्तेफाकी होती है तो हम किसकी तरफ रुजू करते हैं? अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो समझिए उसको हम मुंसिफ मानते हैं। कानून किसका मानते हैं? अदालत किस कानून के मुताबिक फैसला करती है? अदालत कह रहे हैं पर्सनल लॉ को नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से फैसला, जब हमारे पास आएंगे तो हम अपने हिसाब से फैसला देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हैसियत है तो बस इतनी है कि अगर दोनों मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड के मसले को तस्लीम करती है तो ठीक है, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड से रुजू नहीं करती है, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं दोनों मुसलमान, तो फैसला जो होता है वो कानून हिंद के मुताबिक होता है, यानी कानून कुरान के मुताबिक नहीं होता। तो जब कानून कुरान को मुसलमान नहीं मानता है तो फिर वो मुसलमान अपने आप को कैसे कह सकता है? कितना अजीब मसला है। यही वो अहम तरीन मसला था जिसकी वजह से पर्सनल लॉ बोर्ड का क्याम अमल में आया, जिसकी वजह से छोटी छोटी मुस्लिम अदालतें वजूद में आई, हर उलमा के पास एक दारुल कजा बनाया गया और मुसलमानों ने दारुल कजा की जरूरत को महसूस किया। आप बताइए शिया अगर मुसलमान है तो शियों का दारुल कजा कहाँ है? किस आदिम के घर में जो है कजावत होती है? क्या शिया मुसलमान नहीं है? अगर शिया मुसलमान है तो शिया मुसलमान अपने फैसले कौन सी अदालत में ले जाते हैं? दारुल कजा कहाँ है इनका? अगर दारुल कजा नहीं है तो इज्तिमाए तशय्यो यानी फर्द फर्द हो सकता है शिया, लेकिन कौम तशय्यो मुसलमान कैसे हो सकती है जब उनके पास दारुल कजा नहीं है? अदालत कहाँ होती है उनकी? ये वो अहम लतीफा सुनाता हूँ। एक तोतले मौलवी साहब का कुरान पढ़ाने के लिए आए थे, उन्होंने बच्चे से कहा वैलुल्ले टुल्ले, उनको तोतले थे साहब, मौलवी साहब तोतले थे, कह रहे थे वैलुल्ले टुल्ले, तो बच्चे ने कहा वैलुल्ले टुल्ले, तो कहा मैं कहूंगा वैलुल्ले टुल्ले, तुम नहीं कहना, तुम क्या कहना? ये मैं कहूंगा वायलेंट टुल्ले, लेकिन तुम नहीं कहना वायलेंट, तुम क्या कहना? तो बच्चे ने हम क्या कहें? तो कह रहा हूं तुम कहो वायलेंट टुल्ले, तो क्या वो तो कह रहा हूं मैं भी यही कह रहा हूं। यानी हमारे लिए है तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए अलग कानून है तुम्हारे लिए अलग कानून, यानी कानून हम पर हाकिम नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो हाकिमान वक्त है वो इस्लाम पर अमल नहीं करते, तो इस्लाम वहां पर असीर है, मुतव्वे के ऊपर हाकिम गालिब है और ये मुतव्वे ताबे हैं हाकिम के। कभी इन्होंने फतवा दिया कि जो है औरतों को ड्राइविंग का हक नहीं है, ये कौन सा फतवा था? उनके बकौल इस्लामी हुक्म नहीं है, जबकि इस्लामी हुक्म है तो फिर हाकिम वक्त ने जब इनकी इनके कान मरोड़े, इन्होंने कहा कि नहीं जायज है, आप लोग औरतें जो है वो ड्राइविंग कर सकती हैं। ये फतवा बदला कैसा गया? इसलिए कि ये उस वक्त तक इस्लामी बात कर सकते हैं जब तक कि उनका हाकिम उन्हें मना ना कर दे। जब उनका हाकिम मना करता है तो हुक्म कुरान के मुताबिक हुक्म हाकिम को तरजीह देते हैं कि हुक्म हाकिम मर गए मुफाजात, हाकिम का हुक्म है हमें मानना ही पड़ेगा। तो मालूम यह हुआ मुसलमान मुल्क में जो दावा करता है कि ये इस्लामी मुल्क है उसमें इस्लाम का हुक्म नहीं चलता, यानी जो मुतव्वा होता है वो खुद ताबे होता है हाकिम का, और इस्लाम वहां पर असीर है, इस्लाम वहां हाकिम नहीं है। होना ये चाहिए था कि जो मुतव्वा है जो मुफ्ती है वो अब्दुल्ला के ऊपर भी रहे कि अब्दुल्ला खुद ताबे रहे। अब आइए आप, एक और मुल्क है जो इस बात का इत्तेहा करता है कि हम इस्लामी मुल्क हैं, वो है ईरान का मुल्क। ईरान कहता है हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क का मतलब ये, मैंने अभी कहा कि इस्लामी मुल्क का मतलब ये नहीं होता है कि जो हाकिम होता है वो अपनी मनमानी करे। अपनी मनमानी जो करता है तो उसमें फिर वो हाकिम की हुकूमत कहलाती है, अल्लाह की हुकूमत नहीं कहे। अल्लाह की हुकूमत जब होगी जब अल्लाह का हुक्म चलेगा, अगर अल्लाह का हुक्म मुल्क में नहीं चलता है तो फिर वो अल्लाह की हुकूमत नहीं है। तो अब जो वहां का सदर जमहूरिया बनता है वो सदर जमहूरिया अपना हुक्म नहीं चला सकता है। ये बात लोग नहीं जानते हैं, लोग समझते हैं कि ईरान का जो सदर जमहूरिया है वही सब कुछ कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो उतना ही कर सकता है जितना शरा इजाजत देती है, जितना कुरान इजाजत दे सकता है उसी हदूद में, उस हदूद से तजावुज नहीं कर सकते। अगर कोई भी काम हत्ता मुजाकिरात के लिए भी कुरानी आयत का होना जरूरी, अगर कुरानी आयत इजाजत न दे मुजाकिरे के लिए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। कुरान की इजाजत चाहिए हर काम के लिए। सदर जमहूरिया अगर कोई भी बात करता है तो उसके लिए कुरानी प्रूफ चाहिए। आम आवाम क्या करती है इससे कोई गरज नहीं है, आम आवाम घरों के अंदर बैठ के क्या करती है उससे गरज नहीं है, लेकिन कानून जो बनता है अदालत में जब आप जाते हैं तो अदालत में आपको कुरान के मुताबिक फैसला किया जाता है। अगर कुरान के मुताबिक फैसला हो तो समझिए हुकूमत हुकूमत अल्लाह है। अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही है तो इसका मतलब यह है कि वो इस्लामी हुकूमत नहीं है। अब इस सदरे जमहूरिया के ऊपर मुफ्ती आजम होते हैं जो मर्जे वक्त हैं। आप बताइए सऊदी अरब में जो मुफ्ती आजम है वो अब्दुल्ला के ऊपर है या अब्दुल्ला के नीचे है? अगर अब्दुल्ला के नीचे है तो इसका मतलब यह है कि अब्दुल्ला का हुक्म आखिरी हुक्म है, हुकूमत अब्दुल्ला की ना कि अल्लाह की हुकूमत। मुफ्ती अब्दुल्ला को पर हुक्म नहीं चला सकता है, लेकिन ईरान में सदर जमहूरिया ताबे होता है मर्जे वक्त के, और खुद मर्जे वक्त अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, वही कहते हैं जो कुरान और हदीस में है, यानी कुरान और हदीस से हटकर कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ कहें तो उनके पास प्रूफ होना जरूरी है, बगैर प्रूफ के वो भी कुछ हुक्म नहीं दे सकते। जिस तरह से वो लोगों से कहते हैं कि तुम लोग पाबंद हुक्म बन जाओ, पहले वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं फिर दूसरों को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हुक्म खुदा के वो पाबंद नहीं है, जो हाकिम है वो भी ताबे हुक्म इलाही है कि ये मर्जा का हुक्म है, यानी मर्जा हुक्म दे रहा है खुद अमल नहीं कर रहा है। ऐसा होता है क्या? तो जो हुकूमत है, जो हाकिम वक्त है, जो सदर जमहूरिया है, वो अपनी तरफ से कुछ फैसला नहीं कर सकता, वो भी फैसले की जद में। अगर उससे भी कोई फेल सरजद हो जाए तो अदालत उसको भी गिरफ्त में ले सकती। अब अगर मर्जे वक्त खिलाफ शरा कोई काम सरजद कर हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो खुद बहुत माजूर हो जाता है, उसको माजूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रूफ अगर साबित हो जाए तो खुद बहुत माजूर हो जाते हैं, माजूर किया नहीं जाता, माजूर हो जाता। क्यों? इसलिए कि माजूर करने का हक अल्लाह को हासिल है, किसी बंदे को हासिल नहीं है। फैसला करने का हक किसी को हासिल नहीं है, फैसला का हक अल्लाह सुभानहू तआला को है। अगर आपने अल्लाह के फैसले का हक ले लिया है तो अल्लाह की कुदरत आपने छीन ली है, इमाम की ताकत आपने छीन ली है, रसूल की हकीमियत को आपने छीन लिया है। ऐसा मुमकिन नहीं है, हुक्म कोई कर ही नहीं सकता, कोई फैसला दे ही नहीं सकता। फैसला देने का हक सिवाय परवरदिगार के किसी को हासिल नहीं है, और वो परवरदिगार के फैसले को इजरा करना रसूल का काम है, उस हुक्म खुदा को पहुंचाना ये इमाम की जिम्मेदारी है। ये कुरान मजीद हुक्म कुरान हुक्म खुदा को पेश करता है, कुरान अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, कुरान के में जो कुछ भी है वो अल्लाह का कलाम है। इसी तरह से रसूल कुछ नहीं कर सकते, रसूल जो कुछ भी कहते हैं वो वही इलाही होती है। इसी तरह से इमाम कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो हुक्म खुदा होता है, हुक्म खुदा के खिलाफ वो कोई फैसला नहीं सुनाते। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आज उस हाकिमे इस्लामी की शहादत की शब है कि जिसने हुकूमत की तो हुकूमत अपने नफ्स की हुकूमत नहीं चलाई, बल्कि अल्लाह के कानून को इजरा करवाया। अल्लाह के कानून को इजरा वो करवा सकता है कि जो अपने नफ्स पर काबू रखता हो, जो खुद अपने नफ्स पर हुकूमत ना रखता हो, वो मिल्लत इस्लामिया का हाकिम कैसे बन सकता है? खुद ही जो नफ्स की गुलामी को कबूल कर ले, जो नफ्स की ख्वाहिशात का दावे हो जाए, वो किस तरह से दूसरों पे हुकूमत कर सकता है? इसीलिए तो कहा कि गैबत के जमाने में उसकी तरफ उनकी तरफ रुजू करो जो साइनन लिनफ्से हाफिदन लिदीने, जो साइनन लिनफ्से हो, जो खुद अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाला हो, वही हुक्म का इजरा भी करवा सकता है दौरे गैबत में। वरना उसको गैबत के जमाने में हक हुकूमत हासिल नहीं है जब तक के वो साइनन लिनफ्से ही ना हो, अपने नफ्स दावे ना हो, वो खुद से फैसला ना दे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला ना दे, बल्कि अल्लाह का हुक्म सुनाए। जब वो अल्लाह का हुक्म सुनाता है तो उस कौल को जो हम सुनते हैं उसका कौल समझ के नहीं सुनते, अल्लाह का कौल समझ के सुनते हैं। मन अल्लमनी हरफा फकत सैजरनी अब्दा, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखा दिया उसने मुझे अपना गुलाम बना दिया। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में कहते हैं अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। मैं मोहम्मद के बंदों में से एक बंदा हूँ, नेजुलाना में कोई रद्द भी नहीं कर सकता। मगर इसका मतलब क्या है? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा माबूद हैं? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा खालिक हैं? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा मालिक हैं कि उनके कोई बंदा हो, उनका कोई बंदा हो जाए? हदीस ये कह रही, मन सैयरनी हरफा, जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया उसने गोया मुझे अपना गुलाम बना लिया। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे इस तरह से इल्म दिया जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चे को चुगाती है। अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाब, रसूलुल्लाह ने मुझे हजार बाब की तालीम दी और मैंने हर बाब में से हजार बाब खोल दी। यानी रसूलुल्लाह ने मुझे सिखाया तो मतलब ये है कि मैंने उनकी बात को मान लिया। अब रसूल की बात को मैं मानता हूँ, रसूल मुझे कोई हुक्म देते हैं तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ तो मैं उनका गुलाम बन गया। लेकिन क्या मैं रसूल का गुलाम हूँ? क्या मैं रसूल का गुलाम हूँ? अगर रसूल अपनी बात मनवाए, अब रसूल जो कहे वो दो हाथ में से खारिज नहीं है, अपनी नफ्सानी ख्वाहिश की गुलामी करें। एक है हवा है, एक है वही, एक वही है एक हवा है। यानी रसूल दो हाथ में से खाली नहीं, नऊज़ बिल्लाह, रसूल हवा के मुताबिक नहीं कह सकते, वही के मुताबिक कहेंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वमा यंतिकु अनिल हवा। यानी रसूल अपनी हवा से कुछ नहीं कहते, यानी नफ्स की ख्वाहिश से कोई कलाम नहीं करते, वमा यंतिक नहीं कहते कुछ, अनिल हवा हवा से नहीं कहते। एक हवा है एक वही है, हवा से नहीं कहते वही से कहते। अगर हवा का हुक्म दे तो हवा का पाबंद बना रहे हैं, अगर वही का हुक्म दे तो वही का ताबे बना रहे हैं। अगर रसूल कोई बात कह रहे हैं तो अगर कोई रसूल की बात मान रहा है और रसूल अल्लाह की बात मनवा रहे हैं तो हम अल्लाह के बंदे बन रहे हैं, ना कि रसूल के बंदे बन रहे हैं। इसी तरह से जो लोग अली के बंदे हैं वो अली के बंदे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं। जो लोग रसूल के बंदे हैं वो रसूल के बंदे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और जो लोग नऊज़ बिल्लाह, जो लोग फिरौन की बात मानते हैं, शद्दाद का हुक्म मानते हैं, या अपने मुल्क के हाकिम की बात मानते हैं, किसी अदालत के जज को मानते हैं गैर इस्लामी मुल्क के, तो इसका मतलब ये है कि वो हवा की बात मानते हैं। इसलिए कि सभी के सभी लोग हवाए नफ्स से बात करते हैं, कोई वही की बात नहीं करता, तो हमको वो शैतान का ताबे बना रहा है, ना कि अल्लाह का बंदा बना रहा है। अगर कोई शैतान की बात मनवाए तो हमें शैतान का बंदा बना रहा है, अगर कोई अल्लाह की बात मनवाए तो वो हमें अल्लाह का बंदा बना रहा है। अगर कोई बात आप मेरी मान लेते हैं तो आप मेरी बात नहीं मान रहे, अगर मैं अल्लाह की बात मनवा रहा हूँ तो आप जो मेरी बात सुन रहे हैं वो अल्लाह की समझ के सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको अल्लाह की बात मनवा कर अल्लाह का बंदा बनाना
चाहिए।
इसीलिए जो पैगामात इलाहिया को सुनाते हैं उनके लिए ये शर्त लगाई गई है कि अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जो लोग अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं, यख्शौनहु वला यख्शौना अहदा मिनल्लाह, कि वो लोग अगर डरते हैं तो डरते हैं मगर सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते। अगर वो पैगाम को वही पहुंचा सकता है जो सिर्फ अल्लाह से डरे, अगर लोगों से डर के हुक्म पहुंचा रहा है तो फिर वो अल्लाह की बात नहीं पहुंचा रहा है। अल्लाह की बात पहुंचाने का उसको हक नहीं है जो अल्लाह से नहीं करता। अल्लाह से डरने वाले ही अल्लाह की बात पहुंचा सकते हैं। और उलमा की तारीफ ये नहीं कहा कि जो डिग्री रखने वाले होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो आलिम होते हैं, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। कोई एक रिवायत बता दीजिए कि वो तुम्हारे उलमा हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिनके पास जिन्होंने 10 साल पढ़ा है हौज़े इल्मिया में, जिन्होंने 20 साल पढ़ा है हौज़े इल्मिया में। तो हमारे उस्ताद कहते थे, आगा खराती कहते थे कि वो बिल्ली जो हुज्जतिया में रहती है वो भी 20 साल से रहती है। तो 20 साल हौज़े इल्मिया में रहना ये कोई आलिम होने की अलामत नहीं है। 30 साल हम फौजे इल्मिया ही में पैदा हो जाए, कोई बच्चा मदरसे ही में पैदा हो जाए, वहीं पर मोटा हो जाए, तब भी वो आलिम नहीं, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेने वाला आलिम नहीं होता। आलिम के लिए एक ही कानून अल्लाह ने रखा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले सिर्फ और सिर्फ उलमा होते हैं। यानी अगर अल्लाह का खौफ है तो आप आलिम हैं, जितना खौफ खुदा आपके पास है उतने ही आप आलिम हैं, अगर खौफ खुदा नहीं है तो आप जाहिले मुतलक हैं। पढ़े लिखे होंगे लेकिन पढ़े लिखे जाहिल भी तो होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल। मालूम ये हुआ कि अल्लाह से डरना पहली शर्त, क्यों अल्लाह से डरना, इसलिए कि जब अल्लाह का फैसला सुनाना है आपको तो अल्लाह का खौफ होना जरूरी है। अल्लाह का खौफ बगैर रखे हुए अल्लाह का फैसला कैसे सुना सकते हैं? आप कहते नहीं मसलहत ये नहीं है, मैं हुक्म नहीं बता सकता हूं। आगा इस वक्त खौफ की हालत में है, नहीं बता सकते हैं। अगर खौफ की हालत में है, हालत बयान में नहीं है, अगर मसलहत की बुनियाद के ऊपर, मसलहत की बुनियाद के ऊपर कोई बात नहीं कही जा रही है तो इसका मतलब यह है कि खौफ अल्लाह के अलावा किसी का नहीं होना है। अगर किसी का खौफ इंसान के दिल में बैठ जाए तो फिर वो फैसला नहीं सुना सकता है, मर्जाए दीनी नहीं बन सकता है, उसके ऊपर से खौफ खत्म हो जाना चाहिए। कोई खौफ नहीं, कोई मसलहत नहीं बरतना चाहिए। अब कोई मसला पूछते हैं ना तो कहते आप कौन बात कर रहे हैं, यानी आप मिजाज पूछ के फैसला देंगे, किस पार्टी से हैं आप, कहां के रहने वाले, जो हुक्म है आप बयान कर दीजिए। आपको डर किस बात का, अल्लाह का हुक्म है आप बयान कर दीजिए, आपका हुक्म है आप अपने, या तो आप अपने से हुक्म दे रहे हैं, अगर मैं ये हुक्म दूंगा तो क्या होंगे, यानी मतलब ये हुक्म दूंगा तो जो है आवाम में जो है बदगुमानियां फैल जाएंगी, आप हाकिम वक्त हैं, आपकी हुकूमत है, आप फैसला देने का हक रखते हैं, आपका हुकुम चलता है, आप हुकुम दे सकते हैं कि ये मेरा हुकुम है। हुकुम तो रसूल का भी नहीं चलता, मालूम है आपको, सिवाय अल्लाह के किसी का हुकुम नहीं चलता। अगर रसूल अल्लाह का हुकुम दे तो फिर उनका हुकुम चलेगा, उनका हुकुम चलेगा, वह उन्वान अल्लाह के हुकुम के तौर पे चलेगा, मालूम है। इसीलिए कुरान ने कहा कि रसूल अपनी तरफ से फैसला नहीं करते हैं, नबी तुमने कंकरियां नहीं फेंकी, ये कंकरियां हमने फेंकी हैं, तुम्हारी कंकरियां तुम फेंके हो लेकिन हमारे हुकुम से फेंके हो, ये हमारा हुकुम हमने फेंका। तो डर किस बात का है? रसूलुल्लाह को भी है खौफ, तो सबको तारी होता है, रसूलुल्लाह को भी खौफ तारी हुआ है ना, गदीर में खौफ तारी हुआ। अब ये बहस अलग है कि किस बात का खौफ था, जान का खतरा था कि लोगों की गुमराही का खौफ था, खौफ तो था लेकिन अल्लाह ने कहा है नबी घबराओ मत, मेरा हुक्म है इजरा कर दो, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक वइन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालत, ऐ रसूल आपके हुक्म को पहुंचा दीजिए, बस पहुंचा दीजिए, आपका काम पहुंचाना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। नहीं, मैं ये समझता हूं ऐ परवर, तू तो ये कह रहा है लेकिन यहां इजरा करवाना या ना करवाना ये मेरा मसला है, मैं तो ये समझता हूं कि यहां पर ये इजरा नहीं हो सकता है, मेरे गुमान में तो ये मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं यहां पर चेहरे ऐसे देख रहा हूं कि जिसकी वजह से मसलहत नहीं समझता कि ये हुक्म यहां पर बयान करो, मदीना पहुंच के बयान करोगा, रास्ते में कोई वजह नहीं है बयान करने की, मैं नहीं समझता ये सही वक्त हो। अल्लाह कह रहा है नहीं मुस्तफा, यहाँ मुस्तफा भी नहीं, यहाँ ताहा भी नहीं, यहाँ यासीन भी नहीं, यहाँ मुजम्मिल भी नहीं, यहाँ मुदस्सिर भी नहीं, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल नहीं, या अय्युहर रसूल, ओहदे मनसब से होगा, हम नहीं पहचानते तुम ताहा हो, यासीन हो, मुजम्मिल हो, नहीं, हम तुमको रसूल की हैसियत से पुकार रहे हैं कि ऐ रसूल यहाँ तुम्हें इजरा करना है, अगर तुमने इस हुक्म को नहीं माना तो फिर तुम
گویا ہمارا کوئی حکم پہنچائی نہیں گیا,
تم کے رسول نہیں رہے. تمہارا کام پہنچانا ہے, خود سے کچھ نہیں کرنا ہے. جب رسول خود سے نہیں کرتا تو پھر یہ رسول کی فقہ کو ماننے والا عالم کیسے اپنا حکم جتاتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں؟ پھر یہ کہنا کہ تاریخ میں ہو یا نہ ہو لیکن احساسات کے ہی کہتے ہیں, جذبات کے ہی کہتے ہیں, تو دین جذبات اور احساسات کا نام بن گیا. دین آپ کے ذاتی احساسات کا نام بن گیا. جو لوگ آپ کے کہنے پہ دین میں داخل ہوں گے, آپ کے کہنے سے دین سے نکل بھی جائیں گے. کسی کے کہنے سے اگر دین لیں گے, کسی سے دین لیں گے, تو آپ کو کسی کی وجہ سے دین سے خارج بھی ہونا پڑے گا. ہمارا جتنا بھی ذہن بنا ہوا ہے, آپ بتائیے کس کی باتیں سن کے بنا ہوا ہے. ہمارا جتنا بھی تصور ہے, جو جتنی تاریخ ہماری ہے وہ ہم نے کس سے لی, ہمارا ذہن جو بنا ہوا ہے کس کے کہنے پہ بنا ہوا ہے. خطیبوں کی تقریروں سے ہم نے غدیر بھی لیا, خطیبوں سے ہم نے تاریخ بھی لیا, خطیبوں سے ہم نے تفسیر بھی لیا. سارے واقعات مقتل لیا تو خطیبوں سے لیا, تاریخ لیا تو خطیبوں سے لیا, تفسیر لیا تو خطیبوں سے لیا, حدیث لیا تو خطیبوں سے لیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خطیب محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, مرجع وقت بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ثابت کروں گا, یعنی میں مرجع ہوں, اور منبر پہ اجتہاد کرنے لگتے ہیں یہ دلیلوں کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. یعنی آپ مرجع بھی ہو گئے. کہا میں جانتا ہوں کہ یہ حدیث کس نے نقل کی ہے, یعنی آپ محدث بھی ہو گئے, علم رجال سے بھی واقف ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا, جبکہ آپ کسی مکتب اور مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن آپ محدث بھی بن گئے, مبرر بھی بن گئے. کہتے تاریخ میں ہو یا نہ ہو لیکن احساس یہی کہتا ہے, آپ مبرر بھی ہو گئے. یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے میں جانتا ہوں, آپ محدث بھی ہو گئے. قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے تو آپ مفسر بھی ہو گئے. یہ گلی کا خطیب نہیں ہوا, یہ مفسر قرآن بن گیا, یہ مرجع وقت بن گیا, یہ حاکم دورہ بن گیا. میں فیصلہ سناتا ہوں, مطلب آپ حاکم وقت بھی ہو گئے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ لاوارث مذہب ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, ان میں کوئی مفسر نہیں ہے, ان میں کوئی محدث نہیں ہے, ان میں کوئی مورخ نہیں ہے, ان کا کوئی عالم نہیں ہے جو خوف خدا رکھتا ہو. عزیزان گرامی, ملت مسلمہ میں ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں, ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم میں جو انسجام ہے وہ کسی میں نہیں ہے. ہم جس طرح سے حکم خدا کے تابع ہیں ویسے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حکم خدا کا ایسے تابع ہو جیسے ہم تابع ہیں. جتنی توحید ہماری مضبوط ہے شاید ہی مسلمانوں میں کسی کی توحید مضبوط ہوگی. ہم پوری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں, اس کے قول اور اس کے فعل اس کے حکم کے تابع ہیں. ہم سے بڑا کوئی تابع حکم الہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, آج ہم جس امام کی شہادت منا, ان کی پوری زندگی دیکھ لیجئے, ان کی پوری زندگی دیکھ لیجئے. اگر یہ خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ پوری امیر المومنین کی زندگی کو قرآن کے مطابق دیکھیں. عمر ابن عبدالعزیز ایک موقع پر, جبکہ جنگ کا حساس ترین موقع ہے, اس وقت میں جب شدت کی جنگ ہو, اس وقت ایک عجیب امتحان امیر المومنین سے لیا گیا ہے. جس وقت انسان اللہ کا انتقام لے رہا ہو, اس وقت ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ یہ غصہ جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے آیا ہے, یہ آپ کا ذاتی جو ہے وہ غصہ ہے, اپنی ذاتی غصہ ہے, یعنی ذات کی توہین کر رہا ہے اس لیے غصہ ہے, اپنا دشمن ہے اس لیے غصہ آ رہا ہے, آپ کو برا کہا ہے اس لیے غصہ آ رہا ہے, یہ اللہ کی شان میں توہین کی ہے اس لیے غصہ تو ہے. اب غصے کا امتحان ہے کہ یہ غصہ کیوں ہے, کس کی وجہ سے ہے, کس کی وجہ سے غصہ ہے. ہمارے پاس جو فیصلے ہوتے ہیں نا, تو وہ فیصلوں میں یہ دیکھا جاتا ہے اپنا کون ہے, سگا بھائی ہے تو الگ فیصلہ ہوگا, دوست ہے تو الگ فیصلہ ہوگا، دشمن ہے تو الگ فیصلہ ہوگا. امیر المومنین عمر بن عبد الوہاب کے سینے پہ سوار ہے، اس وقت وہ جو گستاخی کرتا ہے تو امیر المومنین اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں. اتر بھی یہ بتاتے ہیں کہ میرا نفس، میں اپنے نفس کی نہیں سن رہا ہوں، اگر میں نفس کی سن رہا ہوتا تو اس کا قتل کر دیتا. کہا نہیں، اتر گئے. اب جو سوار ہوئے تو وہ اللہ کی دشمن سمجھ کے قتل کیا، اپنا دشمن سمجھ کے. جب اپنا غصہ آیا تو پی لیا. والقادمین الغیظ والعافین عن الناس، پی جاتے ہیں غصے کو، غصے کو. یہ اس بات کی طرف نشان نہیں ہے کہ تابع حکم الہی ہے، اپنے نفس کے تابع نہیں ہے، اللہ کی. تو آج اس امام کی شب شہادت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ قربان کر دیا. آپ نے سامنے کل میں نے عرض کیا کہ قاتل کے بارے میں جو وصیت کی امیر المومنین نے، آپ کے بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ ایک حاکم اسلامی سے یہ ممکن ہے؟ ایک عام انسان بھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا، اس پر ترس نہیں کھاتا، امیر المومنین کہتے ہیں اس کے ہاتھوں کو کھول دو، یعنی اس کا تڑپنا امیر المومنین کو گوارا نہیں ہوتا ہے. وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو امیر المومنین کہتے ہیں خوف زدہ مت ہو. امیر المومنین اپنے سامنے کی وضع اٹھا کر کہتے ہیں قاتل کے حوالے کر دو. ایک مجرم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ امیر المومنین کا دیا ہوا سبق ہے. امیر المومنین اپنے دشمن کے ساتھ، جبکہ وہ دشمن حر کی طرح نہیں ہے، ابھی اس نے معافی بھی نہیں مانگی ہے، صرف خوف سے کام رہا ہے کہ یہ حاکم ہے، یہ میرے ساتھ کوئی بھی سلوک کروا سکتے ہیں، یہ چاہے تو میرے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے. امیر المومنین کہتے ہیں یاد رکھو میرے چاہنے والوں، میرے دشمن کے ہاتھ پیر کو نہ کاٹنا. اپنے دشمن کے بارے میں یہ امیر المومنین کا انداز ہے. تو دنیا مزاج علی کو سمجھیں کہ علی کا مزاج کیا ہے. علی اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دشمن کو نہیں معاف کر سکتے، اور اللہ کے دشمن کو جو فیصلہ سناتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، کہ اللہ کے دشمن کو اپنی مرضی کے مطابق سزا دیں، کہ میں جیسے چاہتا ہوں ویسے سزا دوں گا، نہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے سزا دوں. یہ امیر المومنین کا کہنا ہے. امیر المومنین نے یہاں تک کہا کہ دیکھو اگر میں اس ایک ضربت سے شہید ہو جاؤں، دنیا سے گزر جاؤں، تو تمہیں اگر قصاص لینا بھی ہے تو ایک ہی ضربت کے مقابلے میں ایک ضربت لگانا، دوسری ضربت نہ لگانا. یہ امیر المومنین کی تاکید ہے. شدت عدالت کس قدر شدت عدالت ہے؟ عدالت کی شدت اپنے انتہا پر ہے کہ جاتے جاتے بھی امیر المومنین نے انصاف کیا، عدالت سے کام لیا. امیر المومنین جب جناب ام کلثوم کے گھر مہمان ہوتے ہیں، جب غذائیں لائی جاتی تو کہتے ہیں کہ بیٹا ایک غذا کو میرے سامنے سے ہٹا لو. امیر المومنین اپنے نفس پر اس قدر سختی برتتے ہیں کہ لوگ غیروں پر سختیاں سختی برتتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ سختی نہیں برتتے. لوگ کہتے ہیں دوسرے لوگ محروم رہ جائیں لیکن میں محروم نہیں رہوں گا. علی کہتے ہیں تم لوگ محروم نہ رہنا، اگر محروم رہنا ہے تو ان نظاؤں سے میں محروم رہوں گا، لیکن تم لوگ ان لذتوں کو استعمال کرو، تم لوگ ان نظاؤں کو استعمال کرو لیکن میرے لیے مناسب نہیں. امیر المومنین اپنی ذات پہ اتنی سختی برتتے ہیں، ہے کوئی حاکم اسلامی؟ امیر المومنین مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جب مسجد میں ایک دو لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو نماز امیر المومنین نے پڑھی ہے، جس نماز میں امیر المومنین کو شہید کیا گیا ہے، وہ نماز
समय नहीं बंधी थी अभी, अभी मुसल्ली जमात नहीं हुए थे, यानी वो नमाज जमात की नमाज नहीं थी, बल्कि नमाज सुबह से पहले या नमाज तहज्जुद पढ़ रहे थे या मुस्तहब नाफिले सुबह पढ़ रहे थे, नाफिले सुबह की नमाज थी। वरना अभी तो चाहने वाले जमा नहीं हुए थे, अभी सफ़े नहीं बनी थी, अभी मुसल्ली नहीं आए थे। ये अली की शान है कि जब मुसल्ली बाद में आते हैं, अमीरुल मोमिनीन पहले मस्जिद पहुंचते थे, और इसी शिद्दत अदालत की वजह से, अमीरुल मोमिनीन की इसी खुदा परस्ती की वजह से, इसी अल्लाह की और हक परस्ती की वजह से, देखिए बहुत सारे वो लोग जो गैर जानिबदार हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अमीरुल मोमिनीन से जो लोग दूर हो गए थे, वो दर हकीकत उनकी हक परस्ती की वजह से। कि एक एक अदीब ये लिखता है कि अली की हक परस्ती की ताप ना कर मुसलमानों की एक जमात कसीर ने अली का साथ छोड़ दिया। अली का साथ छोड़ने की वजह ये थी कि अली हक पर थे और हक परस्ती के इतने दावे थे कि अली हक को नहीं छोड़ सकते थे। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन ने मेहराब इबादत में जब अली खड़े होते थे तो वैसे नहीं कि जैसे मैदानों में अली इब्ने अबी तालिब की जंग हुआ करती थी, अमीरुल मोमिनीन इस तरह से मेहराब इबादत में खड़े होते, ऐसे कांपते थे कि अपनी सादिक आ जाती थी, अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होते थे तो पूरी तवज्जो के साथ के अमीरुल मोमिनीन का कयाम, अमीरुल मोमिनीन का रुकू, सब कुछ अल्लाह के लिए था। यहाँ तक के जब अमीरुल मोमिनीन नाफिले सुबह की नमाज में सर सजदे में झुकाए हुए थे, एक मलून आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जब वार करना चाहा, लेकिन वो वार मेहराब से टकरा गई, वो वार उसकी नाकाम हो गई, तो वो मलून हट गया। उसके बाद इब्ने मुल्जिब अपनी जहरालू तलवार लेके आया, उसने कहा तू हट जा, मैं अमीरुल मोमिनीन पे सरबत लगाऊंगा। इब्ने मुल्जिब में मुरादी आगे बढ़ा और जहरालू तलवार से फर्क अमीरुल मोमिनीन पर इस तरह से हमला करता है कि अमीरुल मोमिनीन का सर शिगाफ्ता हो जाता है और खून में मुसल्ला रंगीन हो जाता है, मेहराब इबादत खून में रंगीन हो जाता है और जमीन कूफा लहजने लगती है, हातिमे गैनी की सदा आती है, लतहत्मत वल्लाह अरकान अलहुदा व बुदिला अमिन मुस्तफा। कि हाँ मुस्तफा का चचाजाद शहीद हो गया, हाँ अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। ये आवाजें कूफे भी मस्जिद से गूंज के बाहर आने लगी और दुश्मन फरार हो गया। अब जो मुसल्ली आए तो क्या देखा कि अली मेहराब इबादत में इस तरह से के उठा नहीं जाता, सर शिगाफ्ता हो चुका है। और इस तरह के जनाब शहजादे को मैं हसन और हुसैन को भेजती है, हसन और हुसैन पहुंचते हैं, अमीरुल मोमिनीन को लेकर बैतुश्शरफ में दाखिल होते हैं। बैतुश्शरफ में पहुंचने के बाद वसीयतें शुरू होती हैं और वसीयती करने के बाद अब लम्हे करीब आते हैं जब जुदाई के लम्हे हैं। ये वो जुदाई के लम्हे थे जिसके लिए ज़ैनब तैयार नहीं थी, ये न जानती थी कि मेरे बाबा हाकिमे वक्त हैं। कौन है जो हाकिमे वक्त पर इस तरह का सलूक कर सकता। लेकिन ज़ैनब ने मंजर भी देखा कि बाबा का सर शिगाफ्ता है। ज़ैनब ने दो मरहले देखे, एक कूफे का मरहला, एक करबला का मरहला। कूफे में सर शिगाफ्ता देखा, करबला के मैदान में भाई थकता हुआ गला देखा। अला हुसैन कर बला وسيعلم الذين